पृष्ठ संख्या 29। प्लेटो के विज्ञान पर चौथा दृष्टिकोण है सत्ता की दृष्टि से। चौथा, सत्ता की दृष्टि से विज्ञान चिद्रूप शुद्ध सत है। विश्व के पदार्थ अपनी सत्ता विज्ञानों से ही लेते हैं। इस सत्ता का तारतम्य है, जो पदार्थ विज्ञान की ओर जितना अभिमुख है उसकी उतनी ही अधिक सत्ता है। विज्ञान नित्य, अविकारी, अविनाशी, शाश्वत, सामान्य और सत है। ये हमारी बुद्धि की कोरी कल्पना नहीं है। हमारे विज्ञान इन दिव्य विज्ञानों की अभिव्यक्ति मात्र है। इन विज्ञानों की वास्तविक सत्ता है। जगत के पदार्थ इन विज्ञानों के ही प्रतिरूप हैं। एरिस्टॉटल के अनुसार सॉक्रेटिस इन विज्ञानों को केवल सामान्य ही मानते थे और इन्हें सांसारिक विशेषों से पृथक नहीं करते थे, किंतु विज्ञानवाद के समर्थकों ने अर्थात प्लेटो ने इनको वस्तु जगत से पृथक करके दिव्य लोक में स्वतंत्र सत्ता दे दी। एरिस्टॉटल का यह कथन विचित्र है। सॉक्रेटिस निसंदेह इन विज्ञानों की स्वतंत्र सत्ता मानते थे। स्वयं एरिस्टॉटल भी इन विज्ञानों की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु उनका आक्षेप केवल इतना ही प्रतीत होता है कि प्लेटो ने विज्ञानों को पर क्यों माना। एरिस्टॉटल विज्ञानों को विशेषों में अनुगत मात्र मानते हैं, उससे पृथक नहीं, किंतु विज्ञानों को अनुसृत मात्र मानने से उनकी सत्ता विशेषों पर निर्भर नहीं हो जाएगी। एरिस्टॉटल को विवश होकर स्वीकार करना पड़ा है कि वस्तुतः सत्ता विशेषों की ही है और सामान्यों की सत्ता गौण है। किंतु यदि ऐसा है तो फिर सामान्यों की वास्तविक सत्ता मानने का क्या अर्थ? एरिस्टॉटल ने प्लेटो का खंडन करने के लिए ही स्वयं को इस विचित्र विरोधात्मक परिस्थिति में फंसा लिया, जिससे वे कभी मुक्त नहीं हो सके। एरिस्टॉटल ने जितने भी आक्षेप इस विज्ञानवाद पर किए हैं उनको स्वयं प्लेटो ने पार्मेनाइडीज में पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित करके उनका उत्तर दे दिया था। अतः एरिस्टॉटल के आक्षेप एकांगी और भ्रामक हैं। आश्चर्य है कि पार्मेनाइडीज को पढ़कर भी एरिस्टॉटल ने प्लेटो पर आक्षेप किया। पृष्ठ संख्या 30। पार्मेनाइडीज के कुछ स्थल यहाँ उद्धृत करना ठीक होगा। पार्मेनाइडीज ने पूछा, अच्छा सॉक्रेटिस, यह तो बताओ कि क्या तुम इस बात को मानते हो कि विश्व के विशेष समान पदार्थों के अतिरिक्त समानता नामक एक सामान्य विज्ञान है और इसी प्रकार एकता तथा अनेकता आदि भी विज्ञान है? सॉक्रेटिस ने उत्तर दिया, अवश्य मैं इसे मानता हूँ। पार्मेनाइडीज ने पूछा, और इसी प्रकार क्या तुम सत्यत्व, सौंदर्य और शिवत्व को ही विज्ञान रूप मानते हो? सॉक्रेटिस ने कहा, हाँ। पार्मेनाइडीज ने पूछा, और क्या तुम हम जैसे विशेष मनुष्यों के अतिरिक्त किसी सामान्य मनुष्य को भी मानते हो? क्या तुम अग्नि या जल के भी विज्ञान मानते हो? साकेटीज ने कहा, इसके विषय में मैं प्रायः दुविधा में पड़ जाता हूँ कि हमें इनके भी विज्ञान मानना उचित होगा या नहीं। पार्मेनाइडीज ने पूछा, साकेटीज, क्या तुम ऐसे पदार्थों के विज्ञान मानने के विषय में भी दुविधा में पड़ जाते हो जिन्हें हम हीन और तुच्छ समझते हैं, जैसे बाल, कीचड़, धूल इत्यादि? साकेटीज, बिल्कुल नहीं, ये पदार्थ तो वैसे ही हैं जैसे हमें प्रतीत होते हैं, इनके विज्ञान मानना निरर्थक है। पार्मेनाइडीज, साकेटीज, अभी तुम नव युवक हो इसीलिए ऐसा कहते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि दर्शन में परिपक्व नहीं हुई है, एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब तुम्हारी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी और तब तुम कीचड़ और धूल इत्यादि को भी हीन या तुच्छ नहीं समझोगे। उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि साकेटीज को गणित के पदार्थों अर्थात समान, एक, अनेक आदि और दर्शन के पदार्थ अर्थात सत्य, सुंदर, शिव आदि के विज्ञान मानने में तनिक भी आपत्ति नहीं थी। भौतिक विज्ञान और प्राणी विज्ञान के पदार्थों जैसे अग्नि, जल, मनुष्य आदि के विज्ञान मानने में उन्हें संदेह था, और साधारण तुच्छ पदार्थों जैसे बाल, कीचड़, धूल आदि के विज्ञान मानना उन्हें स्वीकार नहीं था। किंतु प्लेटो और परिपक्व अवस्था में साकेटीज भी किसी भी पदार्थ को विज्ञान रहित मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यदि किसी पदार्थ का विज्ञान न हो तो उसकी प्रतीति भी नहीं हो सकती। पृष्ठ संख्या 31। भ्रांति के लिए भी अधिष्ठान मानना आवश्यक है। विश्व की कोई भी प्रतिमान वस्तु इतनी तुच्छ नहीं कि उसमें विज्ञान अनुसूचित न हो। इससे सिद्ध होता है कि प्लेटो विज्ञानों को इंद्रिय जगत के अणु अणु में अंतर्यामी मानते थे और विज्ञान जगत को इंद्रिय जगत से पृथक करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐसा होने पर इंद्रिय जगत की व्यवहारिक प्रतीति तक नहीं हो सकती। अरिस्टॉटल जब प्लेटो पर यह अभियोग लगाते हैं कि प्लेटो ने इंद्रिय जगत को विज्ञान जगत से सर्वथा पृथक कर दिया, तो वे इस बात को भूल जाते हैं। प्लेटो के इस विज्ञानवाद पर निम्नलिखित आक्षेप किए जाते हैं जिनको स्वयं प्लेटो ने पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित किया और जिनका समाधान करने का उन्होंने प्रयत्न किया। पहला, यदि विज्ञान अपने दिव्य जगत में रहते हैं तो क्या वे वस्तु जगत के पदार्थों की निरर्थक पुनरावृत्ति मात्र नहीं है? दूसरा, यदि इंद्रिय जगत विज्ञान जगत में भाग लेता है तो क्या इसमें अनवस्था दोष नहीं आ जाता? तीसरा, यदि इंद्रिय जगत विज्ञान जगत का प्रतिबिंब मात्र है तो क्या वह असत नहीं हो जाता? चौथा, क्या इंद्रिय जगत और विज्ञान जगत का द्वैत परमार्थिक नहीं हो जाता? पांचवा, इन विज्ञानों में परस्पर क्या संबंध है? क्या ये अस्त व्यस्त और अनियमित समूह मात्र नहीं? छठवा, इन विज्ञानों का शिव तत्व से ईश्वर से और जीव आत्मा से क्या संबंध है? प्रथम आक्षेप का उत्तर प्लेटो ने इस प्रकार दिया है, विज्ञान इंद्रिय जगत में अंतर्यामी है, उनकी सत्ता के कारण ही इंद्रिय जगत की सत्ता है। इनको पर इस अर्थ में कहा जाता है कि इनकी सत्ता इंद्रिय जगत की सत्ता से सीमित नहीं होती, अतः विज्ञान जगत इंद्रिय जगत की निरर्थक पुनरावृत्ति नहीं है। द्वितीय आक्षेप का उत्तर है, भाग लेने का अर्थ यदि वास्तविक अंश बनना है तो इंद्रिय जगत इस अर्थ में विज्ञान जगत में भाग नहीं लेता। भाग लेने का अर्थ केवल अव्यक्त कर होना है। प्लेटो ने पार्मेनाइडीज में इसे स्पष्ट कर दिया है। पार्मेनाइडीज प्रत्येक वस्तु जो किसी सामान्य विज्ञान में भाग लेती है या तो इस विज्ञान को पूर्णतः लेगी या अंशतः, इसके अतिरिक्त कोई तृतीय विकल्प तो नहीं है। सॉक्रेटिस ने उत्तर दिया, नहीं तो। पार्मेनाइडीज ने पूछा, तो क्या तुम यह मानते हो कि प्रत्येक वस्तु पूर्ण सामान्य को ही ग्रहण करती है? सॉक्रेटिस ने उत्तर दिया, ऐसा तो होना ही चाहिए पार्मेनाइडीज। पार्मेनाइडीज ने पूछा, तो क्या एक सामान्य को अनेक विशेषों में अनुगत होने के लिए विभाज्य नहीं बनना होगा? यदि सामान्य विभाज्य हो गया तो वह एक कैसे रहेगा और फिर नित्य कैसे होगा? सॉक्रेटिस ने उत्तर दिया, बात तो ठीक है। पार्मेनाइडीज ने पूछा, तो अब बताओ कि तुम्हारे विशेष तुम्हारे सामान्य में किस प्रकार भाग ले सकेंगे? सॉक्रेटिस, यह तो विषम समस्या है। पार्मेनाइडीज, मान लो कि कई लंबी वस्तुएं लंबाई रूपी में विज्ञान में भाग लेती हैं, तब क्या इन लंबी वस्तुओं को और इस लंबाई को लंबी बनाने के लिए एक दूसरे विज्ञान की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी? और इस प्रकार क्या अनावस्था दोष नहीं आएगा? सॉक्रेटिस, यह भी विकट समस्या है। तृतीय आक्षेप का उत्तर यह है, यदि प्रतिबिंब को शाब्दिक अर्थ में लिया जाए और इससे यह सिद्ध किया जाए कि बिंब और प्रतिबिंब में परस्पर कोई संबंध नहीं और प्रतिबिंब सर्वथा असत है, तो इंद्रिय जगत विज्ञान जगत का प्रतिबिंब नहीं। वस्तुतः बिंब और प्रतिबिंब का अभिप्राय विज्ञान जगत की पारमार्थिक सत्ता और इंद्रिय जगत की व्यवहारिक सत्ता से है, अन्यथा बिंबों के ज्ञान के अभाव में प्रतिबिंबों का प्रतिपादन भी अयुक्त है और इसमें अनावस्था दोष भी है। चतुर्थ आक्षेप का उत्तर है, इंद्रिय जगत विज्ञान जगत की स्वाभाविक अभिव्यक्त मात्र है, अतः दोनों का भेद व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। तर्क से तत्व साक्षात्कार नहीं हो सकता। तर्क द्वंद्वों में ही फंसा रहता है। जब तक तर्क का स्तर है यह भेद बना रहेगा। जब स्वानुभूति द्वारा शिव तत्व का साक्षात्कार होगा यह द्वैत नहीं रहेगा। पृष्ठ संख्या 33। प्लेटो ने इंद्रिय जगत को कभी असत नहीं बताया। यह जगत प्रतीति मात्र है, यह छाया है, न यह सत है और न असत। सिंपोजियम में जगत को सत और असत की संतान एवं पूर्ण अज्ञान और पूर्ण ज्ञान के बीच की अवस्था कहा गया है। रिपब्लिक में इसे अर्ध सत और अर्ध असत बताया गया है। सोफिस्ट में इसे सत और असत के विरोध पर निर्भर बताया गया है। व्यवहारिक जगत की सत्ता छीन लेने के बजाय प्लेटो ने असत भ्रांति और स्वप्न को भी कुछ न कुछ सत्ता दी है। सोफिस्ट में कहा गया है पूर्ण असत की कल्पना असंभव है। भ्रांति भी जब तक भ्रम है तब तक तो है ही, बोध होने पर ही भ्रांति असत होती है। थिटिसत में स्वप्न दृष्टा का स्वप्न जगत और ज्वर से संतप्त व्यक्ति का काल्पनिक जगत जब तक स्वप्न और ज्वर है तब तक उतना ही सत्य है जितना जागने वाले और स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह इंद्रिय अनुभूत जगत। अतः उन विद्वानों ने जो प्लेटो में इंद्रिय जगत और विज्ञान जगत का आत्यंतिक भेद देखते हैं या जो प्लेटो पर इंद्रिय जगत को असत बना देने का अभियोग लगाते हैं शायद उपयुक्त स्थलों पर दृष्टिपात नहीं किया है। प्रोफेसर बर्नेट का यह कथन है कि इंद्रिय जगत और विज्ञान जगत इन दो जगतों के भेद रूपी भूत को जो पार्मेनाइडीज के समय से ग्रीक दर्शन का सता रहा था प्लेटो ने भगा दिया, अक्षरशः सत्य है। पांचवें आक्षेप का उत्तर है ये विज्ञान परस्पर असंबद्ध और अनियमित नहीं है अपितु शिव तत्व रूपी सूत्र में बंधे हुए हैं। शिव तत्व इनमें अनुसृत है और इनको अनुप्राणित कर रहा है, उसी की ज्योति से ये चमक रहे हैं, उसी कारण इनमें एक रूपता सामंजस्य और समन्वय है। छठे आक्षेप का उत्तर है शिव तत्व इन विज्ञानों का अंतर्यामी अधिष्ठान है। ईश्वर इन विज्ञानों द्वारा सृष्टि का निर्माण करते हैं, ईश्वर सृष्टि के निमित्त कारण हैं और विज्ञान स्वरूप कारण। जीवात्मा के विज्ञान इन नित्य विज्ञानों की ही अभिव्यक्ति है। इंद्रिय अनुभव से बद्ध होने के कारण जीवात्मा इन विज्ञानों का साक्षात नहीं करती। जब वह बंधन मुक्त हो जाती है तो इन विज्ञानों को और इनके अधिष्ठान शिव तत्व को साक्षात अनुभव करती है। पृष्ठ संख्या 34। अतः स्पष्ट है कि प्लेटो के विज्ञानवाद पर जो आक्षेप लगाए गए हैं वे भ्रांत और निर्मूल हैं। पांचवा दृष्टिकोण है रहस्य की दृष्टि से। विज्ञान शिव तत्व की अभिव्यक्ति के स्तर हैं। इन विज्ञानों का बहुत शिव तत्व में विलीन हो जाता है। सिंपोजियम में इस तत्व को परम सौंदर्य या सुप्रीम ब्यूटी और फ्रिट्स में परम सत्व, सुप्रीम बीइंग तथा रिपब्लिक में विज्ञान स्वरूप शिव तत्व आइडिया ऑफ द गॉड कहा गया है। सिंपोजियम में परम सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है, यह नित्य अजात और अविनाशी है, न इसकी वृद्धि है और न हानि, न यह अंशतः सुंदर है और न अंशतः असुंदर, न यह कभी सुंदर और कभी असुंदर है, न यह एक वस्तु की अपेक्षा सुंदर है और न दूसरी वस्तु की अपेक्षा असुंदर, न यह यहाँ सुंदर और वहाँ असुंदर है, न यह कुछ व्यक्तियों के लिए सुंदर और अन्य व्यक्तियों के लिए असुंदर है, और न इस परम सौंदर्य की कल्पना किसी सुंदर मुख या सुंदर हाथ या अन्य किसी सुंदर अंग की समानता से की जा सकती है, और न इसकी कल्पना बुद्धि द्वारा या विज्ञान द्वारा की जा सकती है। इस पृथ्वी में या स्वर्ग में कोई इसके समान नहीं, यह नित्य और सदा समरस है। फ्रिट्स में परम सत्य का वर्णन यह है, परम सत्य का न कोई रूप है, न कोई आकार और न कोई घनत्व, इसका साक्षात्कार केवल विशुद्ध प्रज्ञा से हो सकता है। तब यह ऐसा नहीं प्रतीत होगा जैसा सृष्टि में हो रहा है, उस समय यह अपने नित्य और शुद्ध स्वरूप में प्राप्त होगा। इस परम तत्व का सर्वोत्तम वर्णन रिपब्लिक में हुआ है, जो अज्ञेय है को अर्थात विज्ञानों को, सत और ज्ञाता को अर्थात आत्मा को ज्ञान शक्ति देता है। उसे मैं चाहता हूँ कि तुम विज्ञान स्वरूप शिव तत्व कहो, और उसे तुम विज्ञान तथा सत्य का भी कारण मानो। जिस प्रकार प्रकाश और दृष्टि को सूर्य से प्रकट होने के कारण सूर्य के समान कहा जा सकता है, किंतु इस कथन से ये सूर्य ही नहीं बन जाते, उसी प्रकार विज्ञान और सत्य को भी शिव तत्व के समान कहा जा सकता है, किंतु साक्षात शिव तत्व नहीं। शिव तत्व के आदर का स्थान इनसे बहुत ऊंचा है, जो विज्ञान और सत्य का कारण है। वह कितना अद्भुत सौंदर्य होगा! शिव तत्व केवल सब वस्तुओं के अर्थात इंद्रिय जगत के ज्ञान का ही कारण नहीं, वह उनकी सत्ता और उनके स्वरूप का अर्थात विज्ञानों का भी कारण है। फिर भी इस शिव तत्व को अर्थात अन्य विज्ञानों के समान केवल विज्ञान ही नहीं माना जा सकता। पृष्ठ संख्या 35। क्योंकि इसका गौरवपूर्ण स्थान और इसकी शक्ति विज्ञानों से बहुत ऊपर है, फिलेबस में भी प्लेटो ने इन विचारों की पुष्टि की है। प्लेटो का यह शिव तत्व एक साथ सत्यम शिवम सुंदरम है, यह सत चित आनंद है, यह अन्य विज्ञानों के समान एक सर्वोत्तम विज्ञान नहीं है, यह विज्ञानों का भी विज्ञान है, यह स्वरूपों का स्वरूप है, यह समस्त विज्ञानों का और समस्त सांसारिक पदार्थों का जनक है। यह विज्ञान जगत और इंद्रिय जगत दोनों का अंतर्यामी अधिष्ठान है, यह समस्त सत्ता और ज्ञान का मूल स्रोत है, यह आत्मा को ज्ञान शक्ति और दृश्य जगत को सत्ता प्रदान करता है, यह ईश्वर से भी ऊपर है। ईश्वर केवल सगुण सृष्टा है, जो विज्ञानों के मूल रूपों को आदर्श मानकर सृष्टि करते हैं। यह शिव तत्व ईश्वर और विज्ञान दोनों का कारण है, यह उनका भी प्राण है। प्लेटो ने ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण या काज और नियंता या कैप्टन माना है, तथा शिव तत्व को ईश्वर का भी पिता या फादर ऑफ दैट कैप्टन एंड काज कहा है। प्रोफेसर टेलर ने प्लेटो के शिव तत्व की ईसाई धर्म के ईश्वर से तुलना की है। यह तुलना आंशिक ही हो सकती है क्योंकि दोनों सृष्टि के मूल कारण हैं, किंतु ईसाई धर्म के ईश्वर केवल पर हैं और यह शिव तत्व पर और अंतर्यामी दोनों हैं। यह शिव तत्व निर्गुण और अनिर्वचनीय है, बुद्धि की गति से इस तक नहीं, यह केवल निर्विकल्प स्वानुभूति द्वारा ही साक्षात किया जा सकता है। तर्क द्वंद्वात्मक विरोधों को जन्म देकर अपनी असहायता प्रकट करता है और स्वानुभूत की ओर संकेत करता है। प्लेटो ने इस शिव तत्व के साक्षात्कार को रिपब्लिक में और फिलेबस में भी बहुत सुंदर रीति से बताया है। मान लो कि कुछ मनुष्य पृथ्वी के अंदर एक गुफा में रह रहे हैं। इस गुफा का द्वार प्रकाश की ओर खुलता है। ये मनुष्य यहाँ बचपन से ही रह रहे हैं। इनके पैर और गर्दन साकल से बंधी है और ये पीछे नहीं मुड़ सकते, केवल सामने देख सकते हैं। इनके पीछे और ऊपर की ओर कुछ दूरी पर आग जल रही है और ये लोग दीवार पर केवल अपनी या एक दूसरे की या बाहर की वस्तुओं की छाया ही देखते हैं। अब यदि इनमें से किसी एक को बंधन मुक्त करके ऊपर भेजा जाए और उसे प्रकाश की ओर देखने को बाध्य किया जाए तो पहले उसे तीव्र वेदना होगी, प्रकाश से उसकी आंखें चौंधिया जाएगी, वह उन वस्तुओं को साक्षात नहीं देख सकेगा जिनकी छाया वह गुफा में देखा करता था। क्या वह यह नहीं सोचेगा कि यह छायाकृतियां जिन्हें देखने का वह अभ्यस्त है इन असली वस्तुओं से अधिक सत्य है? पृष्ठ संख्या 36। धीरे धीरे अभ्यास से उसके नेत्र उन वस्तुओं को देख सकेंगे। इंद्रिय अनुभव का जगत छाया मात्र है, हम इसको देखने के ही अभ्यस्त हैं, किंतु जब हमारे बंधन खुल जाएंगे तो हम निर्विकल्प अनुभूति से शिव तत्व का साक्षात्कार कर सकेंगे। हम छाया को ही काया मान बैठे हैं। जब कोई सिद्ध पुरुष तत्व की ओर संकेत करता है तो हम उसे मिथ्या समझते हैं, किंतु निर्विकल्प अनुभूति से हम स्वयं तत्व का ग्रहण कर सकते हैं। तत्व दर्शन ही दर्शन का लक्ष्य है और इसी में उसके नाम की सार्थकता है। अनिर्वचनीय शिव तत्व का इससे अधिक निर्वचन नहीं हो सकता। प्लेटो ने अपने शिष्यों को साक्षात संपर्क में आकर तत्व का उपदेश दिया था, उसको उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। चरम उपदेश तो मौन ही है। प्लेटो के समय में ही उनके शिव तत्व के विषय में लोगों ने कुछ लिखा होगा। उसका खंडन करते हुए स्वयं प्लेटो ने यह लिखा है जो ध्यान देने योग्य है। इस शिव तत्व के विषय पर मेरा कोई लेख नहीं है और न मैं कभी लिखूंगा। इस पर अन्य विषयों के समान कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। काफी लंबे समय तक साक्षात संपर्क में आने से और साधना करने से सहसा एक ज्योति जगा दी जाती है और जब वह आत्मा में पहुंच जाती है तो अपनी पुष्टि के लिए भोजन स्वयं खोज लेती है। कम से कम इतना तो मैं जानता ही हूँ कि इस विषय पर यदि कुछ लिखना या कहना हो तो मैं स्वयं उसे अन्य लोगों की अपेक्षा उत्तम रीति से कह सकता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि अन्य व्यक्तियों द्वारा इस विषय पर मेरे विचारों के नाम से जो कुछ अनर्गल लिखा जा रहा है उससे मेरे नाम की ही हानि होगी। यदि मैं यह सोचता कि इस विषय पर ठीक ठीक लिखा जा सकता है और उसे विश्व के सम्मुख रखा जा सकता है तो जीवन में इससे बढ़कर हर्ष की बात मेरे लिए और क्या होती। किंतु मेरे विचार से ऐसा प्रयास करना भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे कुछ इने गिने लोगों को छोड़कर जिनको संकेत द्वारा साधना के मार्ग पर चलाया जा सकता है और औरों का कोई लाभ नहीं हो सकता। अन्य लोगों को इससे या तो घोर घृणा होगी या उनको यह मिथ्या अभिमान होगा कि उन्होंने वास्तव में कोई अद्भुत वस्तु पा ली है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही धर्म या सद्गुण और अज्ञान अधर्म। वास्तविक ज्ञानी कभी अधर्म नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म ही उसका स्वरूप है। यह ज्ञान ही परम आनंद है। सांसारिक सुखों में उत्कर्षापकर्ष का तारतम्य है। इंद्रिय सुख के ऊपर भावना सुख है, भावना सुख के ऊपर बुद्धि सुख, और बुद्धि सुख के ऊपर स्वानुभूत सुख। पृष्ठ संख्या 37। अज्ञानी जन इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट होते हैं। ये इंद्रिय सुख निरंतर बढ़ने वाली खाज के समान है। इसे खुजलाने में सुख की भ्रांति होती है और वास्तव में दुख बढ़ता जाता है। रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा है, ये लोग विषय सुख के प्रेमी निरे पशुओं के समान हैं। इनकी दृष्टि नीचे है और शरीर पृथ्वी पर झुक रहे हैं। ये लोग खाते पीते और मुटाते हैं तथा संतान उत्पत्ति में लगे रहते हैं। विषय सुख के अत्यधिक प्रेम के कारण ये मानव पशु अपने लोहे जैसे सिंगों और खुरों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और दुलत्तियां झाड़ते हैं और अपनी सदा अशांत तृष्णा के कारण एक दूसरे के प्राण लेते रहते हैं। प्लेटो के अनुसार इस संसार में दुख पूर्वक जीने वाला धार्मिक व्यक्ति सुख पूर्वक जीने वाले अधार्मिक व्यक्ति से कई गुना बड़ा है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को आत्मसंतोष रूपी सर्वोत्तम सुख प्राप्त है। अपनी आत्मा को बेचकर सारे विश्व को खरीद लेने में भी कोई लाभ नहीं। जीवात्मा के तीन अंग हैं, बुद्धि या कॉग्निशन, संकल्प कॉनेशन, और वेदना अर्थात अफेक्शन। बुद्धि का धर्म ज्ञान या विजडम, संकल्प का धर्म बल या करेज, और वेदना का धर्म संवेदनात्मक क्रिया एपेटाइट है। इन तीनों का संतुलन या योग न्याय कहलाता है। इन धर्मों के प्राधान्य के कारण मनुष्यों को भी तीन जातियों में विभक्त किया जा सकता है। जिनमें ज्ञान का प्राधान्य है वे संरक्षक अर्थात गार्जियंस, जिनमें बल का प्राधान्य है वे सैनिक या सोल्जर, और जिनमें क्रिया का प्राधान्य है वे पृथग्जन या आर्टिसंस कहलाते हैं। प्रथम जात के मनुष्य स्वर्ण के हैं, द्वितीय जात के चांदी के और तृतीय पीपल या लोहे के। प्लेटो प्रजातंत्र के विरुद्ध थे क्योंकि उनके अनुसार इसमें ज्ञान का प्राधान्य नहीं होता। उन्होंने लिखा है, घोड़े और गधे स्वतंत्र मनुष्यों के आदर और अधिकारों को प्राप्त करके सड़कों पर दौड़ते चलें और जो रास्ते में आए उसे मारते चलें। स्वतंत्रता, सर्वत्र स्वतंत्रता, क्या यही स्वतंत्रता है? प्लेटो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उच्च टंखलता या परतंत्रता नहीं है, उसका अर्थ ज्ञान तंत्रता है। जब तक दार्शनिक या ज्ञानी संत राजा न बने या राजा दार्शनिक अर्थात ज्ञानी संत न बने, तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। द्वितीय अध्याय समाप्त।